आध्यात्मिक शिक्षण क्या है? गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों भाइयों,
यह दुनिया बड़ी निकम्मी है। पड़ोसी के साथ आपने जरा सी भलाई कर दी, सहायता कर दी, तो वह चाहेगा कि और ज्यादा मदद कर दे। नहीं करेंगे तो वह नेकी करने वाले की बुराई करेगा। दुनिया का यह कायदा है कि आपने जिस किसी के साथ में जितनी नेकी की होगी, वह आपका उतना ही अधिक बैरी बनेगा,
उतना ही अधिक दुश्मन बनेगा, क्योंकि जिस आदमी ने आपसे 100 रुपये पाने की इच्छा की थी और आपने उसे 15 रुपये दिए।
भाई, आज तो तंगी का हाथ है, 15 रुपये हमसे ले जाओ और बाकी कहीं और से काम चला लेना। 15 रुपये आपने उसे दे दिए और वह आपके बट्टे खाते में गए, क्योंकि आपने 85 रुपये दिए ही नहीं। इसलिए वह नाराज है कि 85 रुपये भी दे सकता था, अपना घर बेचकर दे सकता था, कर्ज लेकर दे सकता था अथवा और कहीं से भी लाकर दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। वह खून का घूंट पी करके रह जाएगा और कहेगा कि बड़ा चालाक आदमी है।
मित्रों, दुनिया का यही चलन है।
दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया की ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं कि हमको कम दिया गया,
हमको ज्यादा चाहिए।
असंतोष बढ़ता चला जाता है और यह असंतोष अंततः वैर और रोष के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों, यह ऐसी ही निकम्मी दुनिया है। इस निकम्मी दुनिया में आप सदाचारी कैसे रह सकते हैं, जबकि आपके मन में पत्थर की उपासना करने की विधि न आए? पत्थर की उपासना करने का आनंद जब आपके जी में आ जाएगा, उस दिन आप समझ जाएंगे कि इससे कोई फल मिलने वाला नहीं है, कोई प्रशंसा मिलने वाली नहीं है और कोई प्रतिक्रिया होने वाली नहीं है। यह भाव आपके मन में जमता हुआ चला जाए तो मित्रों,
आप अंतिम समय तक, जीवन की अंतिम सांस तक नेकी और उपकार करते चले जाएंगे, अन्यथा आपकी आस्थाएं डगमगा जाएंगी। साथियों,
आपने हर हाल में समाज की सेवा की, लेकिन जब चुनाव में खड़े हुए तो MPMLA के लिए लोगों ने आपको वोट नहीं दिया और दूसरे को दे दिया।
इससे आपको बहुत धक्का लगा।
आपने कहा कि भाई, हमने तो अटूट सेवा की थी, लेकिन जनता ने चुनाव में जीतने ही नहीं दिया।
ऐसी खराब है जनता।
भाड़ में जाए, हम तो अपना काम करते हैं, हमें चुनाव नहीं जीतना है। उपासना में भी ऐसी ही निष्ठा की आवश्यकता है।
आपने पत्थर की एकांगी उपासना की और एकांगी प्रेम किया।
उपासना के लिए, पूजा करने के लिए हम जा बैठते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं। धूपबत्ती क्या है? धूपबत्ती एक कैंडल का नाम है, एक सीप का नाम है, एक लकड़ी का नाम है। वह जलती रहती है और सुगंध फैलाती रहती है।
सुगंध फैलाने में भगवान को क्या कोई लाभ हो जाता है?
हमारा कुछ लाभ हो जाता है क्या? हाँ, हमारा एक लाभ हो जाता है और वह यह कि इससे हमें ख्याल आता है कि धूपबत्ती के तरीके से और कंडी के तरीके से हमको भी जलना होगा और सारे समाज में सुगंध फैलानी होगी।
इसलिए हमारा जीवन सुगंध वाला जीवन, खुशबू वाला जीवन होना चाहिए।
धूपबत्ती भी जले और हम भी जलें, जलने से सुगंध पैदा होती है।
धूपबत्ती को रखा रहने दीजिए और उससे कहिए कि धूपबत्ती सुगंध फैलाएगी। धूपबत्ती कहती है कि मैं तो नहीं फैलाती। क्यों? जलने पर सुगंध फैलाई जा सकती है, जलना होगा।
इसीलिए मनुष्य को जीवन में जलना होता है, धूपबत्ती की तरह से सुगंध फैलानी पड़ती है।
मित्रों,
आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए पूजा की क्रिया करते करते हम मर जाते हैं।
यह आध्यात्मिक शिक्षण है।
यह शिक्षण हमको सिखलाता है कि धूपबत्ती जलाने के साथ साथ में हमको यह विचार करना है कि यह हमारे भीतर प्रकाश उत्पन्न करती है। दीपक लेकर हम बैठ जाते हैं, दीपक जलता रहता है, रात में भगवान को दिखाई न पड़े, बात कुछ समझ में आती है, लेकिन क्या दिन में भी दिखाई नहीं पड़ता? दिन में भगवान के आगे दीपक जलाने की क्या जरूरत है? इसकी जरूरत नहीं है। कौन कहता है कि दीपक जलाए क्यों हमारा पैसा खर्च कराते हैं, क्यों हमारा घी खर्च कराते हैं? इससे हमारा भी कोई फायदा नहीं और आपका भी कोई फायदा नहीं। आपकी शक्ल हमको भी दिखाई पड़ रही है और बिना दीपक के भी हम आपको देख सकते हैं। आपकी आंखें भी बरकरार हैं, फिर क्यों दीपक जलाते हैं और क्यों पैसा खराब करवाते हैं?
मित्रों,
सवाल इतना छोटा सा है, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत गूढ़ हैं।
इसका संबंध भावनात्मक स्तर के विकास से है।
दीपक प्रकाश का प्रतीक है, हमारे अंदर में प्रकाश और सारे विश्व में प्रकाश का यह प्रतीक है। अज्ञानता के अंधकार ने हमारे जीवन को आच्छादित कर लिया है। उल्लास और आनंद से भरा हुआ, भगवान की संपदाओं से भरा हुआ जीवन, जिसमें सब तरफ विनोद और हर्ष छाया रहता है, लेकिन हाय रे अज्ञान की कालिमा,
तूने हमारे जीवन को कैसा कलुषित बना दिया, कैसा भ्रांत बना दिया। स्वयं का सब कुछ होते हुए भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता।
सब कुछ तो हमारे पास है, पर मालूम पड़ता है कि संसार में हम ही सबसे ज्यादा दरिद्र हैं। हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या?
हमारे मन की एक एक धारा ऐसी निकलती है कि हमको हंसी में बदल देती है, लेकिन हमको हर वक्त रूठे रहने का मौका, नाराज रहने का मौका, शिकायतें करने का मौका, छिद्रान्वेषण करने का मौका, देश घूमने का मौका, विदेश घूमने का मौका ही दिखाई देता है। सारा का सारा जीवन इसी अशांति में निकल गया। मित्रों,
हमने दीपक जलाया और कहा कि यह दीपक
जल और हमको भी सिखा। एक कम हैसियत वाले दीपक, एक कानी कौड़ी की बत्ती वाले दीपक, एक छटांक भर तेल लिए दीपक, एक मिट्टी की ठीकर में पड़े हुए दीपक।
तू अंधकार में प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। मेरे जब से तेरा संग ज्यादा कीमती है।
तेरे प्रकाश से मेरी जीवात्मा प्रकाशवान हो, जिसके साथ में खुशियों के इस विवेक को मूर्तिवान बना सकूं। शास्त्रों में बताया गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय। ए दीपक, हमने तुझे इसलिए जलाया कि तू हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। तमसो मा ज्योतिर्गमय अंतरात्मा की भूली हुई पुकार को हमारा अंतःकरण श्रवण कर सके और इसके अनुसार हम अपने जीवन को प्रकाशवान बना सकें, अपने मस्तिष्क को प्रकाशवान बना सकें। दीपक जलाने का यही उद्देश्य है।
सिर्फ भावना का ही दीपक जलाना होता तो भावना कहती कि दीपक जला लीजिए तो वही बात है, मशाल जला लीजिए तो वही बात है, आग जला लीजिए तो वही बात है।
स्टोव को जला लीजिए, बड़ी वाली अंगीठी अलाव जलाकर रख दीजिए।
इससे क्या बनने वाला है और क्या बिगड़ने वाला है? आग जलाने से भगवान का क्या नुकसान है और दीपक जलाने से भगवान का क्या बनता है?
अतः है दीपक,
तू हमें अपनी भावना का उद्घोष करने दे।
साथियों, हम भगवान के चरणारविंदों पर फूल चढ़ाते हैं।
हम खिला हुआ फूल, हंसता हुआ फूल, सुगंध से भरा हुआ फूल, रंग बिरंगा फूल ले आते हैं। इसमें हमारी जवानी थिरक रही है और हमारा जीवन थिरक रहा है। हमारी योग्यताएं प्रतिभाएं थिरक रही हैं। हमारा हृदयकंद कैसे सुंदर फूल जैसे है। उसे जहां कहीं भी रख देंगे, जहां कहीं भी भेज देंगे, वहीं स्वागत होगा।
उसे कुटुंबियों को भेज देंगे, वे खुश। जब लड़का कमा कर लाता है, 850 रुपये कमाने वाला इंजीनियर पैसा देता है, तो सोफा सेट बनते हुए चले जाते हैं।
माया घर में आती हुई चली जाती है। कौन मना करेगा? कोई नहीं करेगा। खिला हुआ फूल बीबी के हाथ में रख दिया जाए तो बीबी मना करेगी क्या? नाक से लगाकर सूंघेगी, छाती से लगा लेगी और कहेगी कि मेरे प्रियतम ने गुलाब का फूल ला करके दिया है।
मित्रों,
फूल को हम क्या करते हैं? उस सुगंध वाले फूल को हम पेड़ से तोड़कर भगवान के चरणों पर समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर,
हे शक्ति और भक्ति के स्रोत,
हम फूल जैसा अपना जीवन तेरे चरणारविंदों पर समर्पित करते हैं।
यह हमारा फूल, यह हमारा अंतःकरण, सब कुछ तेरे ऊपर न्योछावर है। हे भगवान,
हम तेरी आरती उतारते हैं और तेरे पर बलि बलि जाते हैं।
हे भगवान,
तू धन्य है। सूरज तेरी आरती उतारता है, चांद तेरी आरती उतारता है।
हम भी तेरी आरती उतारेंगे, तेरी महत्ता को समझेंगे, तेरी गरिमा को समझेंगे, तेरे गुणों को समझेंगे और सारे विश्व में तेरे सबसे बड़े अनुदान और शक्ति प्रवाह को समझेंगे। हे भगवान,
हम तेरी आरती उतारते हैं, तेरे स्वरूप को देखते हैं, तेरा आगा देखते हैं, तेरा पीछा देखते हैं, नीचे देखते हैं, सारे मुल्क में देखते हैं। हम शंख बजाते हैं। शंख एक कीड़े की हड्डी का टुकड़ा है और वह पुजारी के मुखमंडल से जा लगा और ध्वनि करने लगा।
दूर दूर तक शंख की आवाज पहुंच गई।
हमारा जीवन भी शंख की तरीके से जब पोला हो जाता है, इसमें से मिट्टी और कीड़ा जो भरा होता है उसे निकाल देते हैं। जब तक इसे नहीं निकालेंगे वह नहीं बजेगा। मिट्टी को निकाल दिया, कीड़े को निकाल दिया, पोला वाला शंख पुजारी के मुख पर रखा गया और वह बजने लगा।
पुजारी ने छोटी आवाज से बजाया, छोटी आवाज बजी, बड़ी आवाज से बजाया, बड़ी आवाज बजी।
हमने भगवान का शंख बजाया और कहा कि मैंने तेरी गीता गाए, तूने सपने में जो संकेत दिए थे वह सारे के सारे तुझे समर्पित कर रहे हैं। शंख बजाने का क्रियाकलाप मानव प्राणियों के कानों में, मस्तिष्कों में भगवान की सूक्ष्म इच्छाएं आकांक्षाएं फैलाने का प्रशिक्षण करता है।
मित्रों,
भावनाओं से भरी हुई, भावनाओं से रंगी हुई जब कभी भी आपकी जिंदगी होगी, तब रामकृष्ण परमहंस की तरह से आपको सर्वत्र काली नजर आएगी।
मीरा की तरह से एक छोटे वाले पत्थर में आपको भगवान नजर आएगा। तब मीरा 10-12 साल की एक छोटी बच्ची थी। एक बाबा जी आए थे, उससे उसने कहा कि हमको भगवान के दर्शन करा दीजिए। मीरा ने कहा कि भगवान मिलेगा। महात्मा जी ने कहा कि हाँ, मिल जाएगा, तो हमको भी दर्शन करा दीजिए। बाबा जी ने अपने झोले में से पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा निकाला जो हाथ से छेनी द्वारा तराशा गया था।
ऐसा भी चिकना नहीं था जैसी कि मूर्तियां मिलती हैं।
गोल सफाचट पत्थर को खोदकर मूर्ति बना दी गई थी। बाबा जी ने वही मूर्ति मीरा के हाथ में थमा दिया।
उसने कहा कि ये कौन है?
ये तो भगवान है, तो इन भगवान को मैं क्या मानूं?
उन्होंने कहा कि जो तेरे मन में आए मान सकती है। मीरा ने कहा कि मेरे ब्याह शादी की जिरह चल रही है, मैं इनसे ब्याह कर लूं तो? बाबा ने कहा कि कर लो।
फिर तो वह तुम्हारा पति हो जाएगा तेरा भगवान। बस मीरा का पति हो गया भगवान। उस गोल वाले पत्थर के टुकड़े को लेकर गिरिधर गोपाल मानकर के मीरा जब घुंघरू पहन करके नाचती थी और जब गीत गाती थी तो भगवान का कलेजा गीत में बस जाता था और मीरा का हृदय गीत गाता था। मित्रों,
यह भावनाओं से भरी उपासना जब कभी भी आपके जीवन में आएगी तब भगवान आएगा और भगवान एवं भक्त दोनों तन्मय हो जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे।
लेकिन हाय रे अभागे लोग, जिनको हम केवल कर्मकांड सिखाते रहे और यह सिखाते रहे कि चावल फेंकते रहना, रोली फेंकते रहना, धूप जलाते रहना, फूल चढ़ाते रहना और चंदन चढ़ाते रहना, लेकिन चंदन जैसे सुगंधित जीवन जीने का ख्याल नहीं आया।
चंदन हमने सिर पर लगाया था तो जरूर, पर कभी यह ख्याल नहीं आया कि चंदन जैसा जीवन जिए।
सारे मस्तक को हम चंदन से लेप लेते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि तेरी जैसी उपमा, तेरे जैसा जीवन बनाने का शिक्षण हमारे मस्तिष्क को दे।
सुगंध से भरा हुआ चंदन, सांप को छाती से लपेटे रहने वाला चंदन, आसपास उगे हुए छोटे छोटे पौधों को अपने समान बनाने वाला चंदन, घिसे जाने पर भी सुगंध फैलाने वाला चंदन, जलाए जाने पर भी सुगंध देने वाला चंदन, क्या मजाल की उसे गुस्सा आ जाए? चंदन, हम तो तुम्हें जलाएंगे।
जला लो, पर मुझमें तो सुगंध निकलेगी। लेकिन सुगंध न निकली तब।
गालियां दी तब। चंदन कहता है कि ऐसा होना बड़ा कठिन है।
मैं कैसे गालियां दूंगा?
गालियां मेरे पेट में है कहाँ? मेरे पेट में तो केवल सुगंध है। चंदन को हम जलाते रहे, गालियां देते रहे और चंदन खुशबू फैलाता रहा।
उसको गुस्सा कहाँ आया?
उसके मन में क्रोध कहाँ आया? उसके मन में ईर्ष्या कहाँ आई?
मित्रों, ईसा को फांसी पर चढ़ाया गया।
उन्होंने कहा कि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।
हे परमपिता परमात्मा, इन्हें क्षमा करना। ईसा मसीह उनके लिए क्षमा की भीख मांगते रहे और उन्हें सूली पर टांगा जाता रहा, खून टपकता रहा और कीलें गाड़ी जाती रहीं।
चंदन जैसे हड्डियों को निचोड़ा जाता रहा,
चंदन को भी पत्थर पर घिसा जा रहा था।
हमने उस चंदन से पूछा कि तुम्हें दर्द नहीं होता। चंदन ने कहा कि यह तुम्हारा काम है और वह तुमको मुबारक हो।
तुम्हारी प्रक्रिया और तुम्हारी गतिविधियां तुम्हारे पल्ले में, लेकिन मेरे शरीर को और मेरे आदर्श को व्यथित नहीं किया जा सकता। घिसो जितना घिस सकते हो। मैंने भी घिसा, घिसते घिसते पसीना निकाल दिया। वह एक रत्ती मात्र रह गया। उसकी सारी की सारी हड्डियों को लोगों ने पीस डाला, लेकिन चंदन सुगंध फैलाता रहा।
जब ऐसा महान देवत्व लकड़ी में है, यदि ऐसा ही इंसान में हो जाए तब हम लकड़ी के चंदन को घिसेंगे, मस्तक पर लगाएंगे और सोचेंगे कि हे चंदन, अपनी जैसी वृत्तियां कुछ हमारे मस्तिष्क में भी ठोंक, जिसमें की कषाय कलमश भरे पड़े हैं,
ईर्ष्या और द्वेष भरे पड़े हैं,
दाह और छल भरे पड़े हैं,
आकांक्षाएं इच्छाएं भरी हुई पड़ी हैं। हमारे सामने न कोई आदर्श है, न कोई उद्देश्य।
हे चंदन, आ और घुस जा हमारे दिमाग में अपनी वृत्तियों सहित। हमने तुझे हरदम लगाया, पर भावना रहित होकर लगाया।
मित्रों, पूजा का उद्देश्य बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है।
पूजा के पीछे न जाने क्या क्या विधान और उद्देश्य भरे पड़े हैं, पर क्या कभी यह हमारे दिमाग में आया? कभी नहीं आया।
केवल लक्ष्यविहीन कर्मकांड, भावनारहित कर्मकांड करते रहे, जिनके पीछे न कोई मत था न उद्देश्य, जिनके पीछे न कोई भावना थी न विचारना।
केवल क्रिया और क्रिया, ऐसी क्रिया की मैं निंदा करता हूँ और ऐसी क्रिया के प्रति आपके मन में अविश्वास पैदा करता हूँ, बाधा उत्पन्न करता हूँ।
बेटे, सही क्रिया के प्रति मैं निराशा क्यों उत्पन्न करूँगा?
मैंने क्रियाशीलता को जीवन में उतारा है। मैंने माला जपते जपते सन 1951 में इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया है। मैंने अपने जीवन देवता को संवारा है। मेरा बेशकीमती समय, सबसे बढ़िया और बेहतरीन समय पूजा में खर्च हुआ है, कर्मकांडों में खर्च हुआ है। सबसे बेहतरीन समय और सबसे बढ़िया सवेरे का समय होता है जो मेरा पूजा में खर्च हुआ है, कर्मकांडों में खर्च हुआ है। सवेरे वाले प्रातःकाल के समय जब गुरुदीक्षा दी जाती है, पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ाई किया करते हैं और पहलवान लोग अखाड़े में पहलवानी किया करते हैं। संसार के इस सबसे बेहतरीन समय को मैंने कर्मकांडों में लगाया है। कर्मकांडों के प्रति आपकी आस्था को मैं क्यों कम करूंगा? आपके मन को क्यों डगमगाऊंगा और यह कहूंगा कि फेंक दो माला? न, मैं नहीं कह सकता।
मित्रों,
माला मेरे प्राणों से प्यारी है। इसको मैं अपने सीने से लगाए रखता हूँ, हृदय में रखता हूँ।
हनुमान जी के पास भी यह माला थी। सीता जी ने जब उन्हें मोती की माला पहनाई, तो हनुमान जी ने उसके मोती को तोड़ तोड़ कर घुमा घुमा कर देखा कि इस माला में मेरे राम जी कहाँ हैं। सीता जी घबराई,
उन्होंने कहा कि राम कहीं माला में होते हैं क्या? हनुमान जी ने कहा कि वह मेरे हृदय में रहते हैं।
उन्होंने कहा कि हृदय चीर कर दिखाओ। हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखाया। हृदय में सीताराम बैठे हुए थे। मित्रों,
मेरी माला के हर मोती में मेरा राम बैठा हुआ है।
उसके हर मनके को मैं घुमाता रहता हूँ और अपने मन की विचारणा को बनाता रहता हूँ। अपने मन के पहिए को घुमाता रहता हूँ और कहता रहता हूँ कि रे मन के पहिए
लौट। सारे संसार का प्रवाह इस तरह से उल्टा पुलटा बह रहा है, मुझे माला वाले प्रवाह की ओर लौट जाने दे।
मुझे अपना रास्ता बनाने दे।
मुझे अपने ढंग से विचार करने दे और मुझे वहां चलने दे जहां मेरा प्रियतम मुझे आज्ञा देता है। इसीलिए पूजा के सारे उपक्रम मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। हैं तो वे निर्जीव पर बड़ा अद्भुत शिक्षण करते हैं, मेरे सामने बहुत उपदेश करते हैं। वे सात ऋषियों के तरीके से बैठे रहते हैं।
पत्थर का भगवान बैठा रहता है, मुस्कराता रहता है।
मेरे सामने कागज की तस्वीर वाला भगवान बैठा रहता है और जाने क्या क्या सिखाता रहता है। और यह भगवान जिसका पूजन करने के लिए हमने फूल रख लिए थे, चंदन रख लिया था, चावल रख लिए थे, रोली रख ली थी, उनको भी मैं देखता रहता हूँ, जाने कैसी कैसी भावनाएं आती रहती हैं।
मित्रों, एक हल्दी का टुकड़ा और एक चूने का टुकड़ा है। चूने का टुकड़ा अगर खा लिया जाए तो दिमाग फट जाए, और हल्दी
जो साग दाल में काम आती है, कपड़े में लगा ले तो वह खराब हो जाए, लेकिन हल्दी और चूने को मिला देते हैं तो रोली बन जाती है, रंग बदल जाता है। मैं विचार करता रहता हूँ कि चूने जैसे निकम्मे प्राण को अपने प्रियतम की हल्दी के साथ खुला मिला दे ताकि वह रोली बन जाए, और वह रोली भगवान के ऊपर लगा लूं और अपने ऊपर लगा लूं तो मैं धन्य हो जाऊंगा,
निहाल हो जाऊंगा, श्री कहलाऊंगा। श्री कहते हैं रोली को।
चूना और हल्दी मिलकर श्री बन जाते हैं, पवित्र लक्ष्मी बन जाते हैं, उसे हम देवता पर चढ़ाते हैं। हम विचार करते रहते हैं कि कलुषित चूने जैसा, लोगों को खा डालने वाला, दीवार पोतने के काम आने वाला, जहां भी डाल दें वहीं खाली जमीन बना देने वाला बेकार का चूना कपड़े पर डाल दे तो कपड़े को जला दे।
मेरा ऐसे चूने जैसा निकृष्ट जीवन यदि हल्दी के साथ मिल गया होता तो रोली बन गया होता।
रोली जिसे हम रोज मस्तक में लगाते हैं और इन्हीं भावनाओं में बहते हुए चले जाते हैं और हमारी उपासना न जाने क्या से क्या हमें दे जाती है।
मित्रों,
जब मैं पूजा पाठ करता हूँ तो इतना हल्का फील करता हूँ कि आप जानते नहीं। भावनाओं के प्रवाह, भावनाओं की तरंगे मेरे अंदर बहती रहती हैं।
ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरा सारे का सारा मस्तिष्क भाव विभोर होता हुआ चला जाता है।
मेरा भगवान हंसता हुआ जाता है और मैं भगवान की गोदी में बैठा बैठा पूजा करता रहता हूँ। जब मैं कर्मकांड में बैठा रहता हूँ तो उसमें भावनाओं का सम्मिश्रण होने के बाद क्या मजा आता है। यही पूजा करने की विधि मैं आपको सिखाने वाला था।
मित्रों,
उपासना अगला वाला हिस्सा नाम जप के बाद शुरू होता है। इसमें नाम जप के साथ साथ ध्यान का समावेश होता है।
भी मन की एकाग्रता का प्रतीक है।
मस्तिष्क में न जाने कितनी धाराएं बहती रहती हैं, कितने कंपन बहते रहते हैं। इसके भीतर जितने प्रशांत प्रवाह बहते हैं उनका यदि एकीकरण कर लिया जाए तो न जाने क्या से क्या चमत्कार उत्पन्न हो जाए।
बेटे, हमने चमत्कार देखा है, कांच का चमत्कार हमने देखा है।
एक छोटा सा आतिशी शीशा लिया और उसे धूप में रखा,
धूप की किरणों को एकत्र किया, एक बिंदु पर फोकस कर दिया और आग जलने लगी। एक इंच के शीशे ने आग पैदा कर दी।
इस आग का इस्तेमाल किया होता तो नील के नील और जंगल के जंगल साफ हो गए होते। यह एक इंच शीशे की आग का कमाल है।
मित्रों,
देव प्रदत्त सत रज तम से युक्त यह देववृक्ष हमारा मस्तिष्क रूपी आतिशी शीशा इतनी शक्तियों को प्रवाहित करता है कि मैं आपसे क्या कहूँ।
हमारा मस्तिष्क सारी शक्तियों, सारी विद्याओं का भांडागार है, स्रोत है।
इसका एक हिस्सा डाकेरिया कहलाता है, जिसके बारे में अभी पता नहीं लगाया जा सका है। यह एक बेकार निकम्मा वाला हिस्सा पड़ा हुआ है। इसका उपयोग किया जा सके तो न जाने क्या से क्या चमत्कार पैदा हो सकते हैं।
अभी मैं गीता का विश्वकोश लिखने वाला हूँ, इसमें मैं सारे विश्व को बदल कर रख दूंगा।
वह इतना महान ग्रंथ है जिसमें न जाने कहाँ कहाँ से कितने भ्रम भरे पड़े हैं, जिनका अर्थ मैं लिखने वाला हूँ। इसका एक एक कोटेशन ऐसा होगा और ऐसे ग्रंथों से होगा, पुस्तकों से होगा, जो देखने में नहीं आई और जो पढ़ी नहीं गई। जिनके हवाले मैं दूंगा वे कहीं से नकल किए हुए नहीं होंगे। आकाश में न जाने कितना ज्ञान घूमता रहता है। हमारे मस्तिष्क का एक एक कण दुनिया में बिखरे हुए ज्ञान को कहीं से भी पकड़ता हुआ चला जाता है।
इतना शक्तिशाली है हमारा मस्तिष्क।
ध्यान साधना के द्वारा मस्तिष्क को साधा जा सके तो वह सारे चमत्कार, सारी सिद्धियां आप हस्तगत कर सकते हैं जिनके बारे में आपने केवल सुना भर है और जिन्हें प्राप्त करने के लिए हरदम लालायित रहते हैं। आज की बात समाप्त।
ओम शांति।